ओम शांति। सबसे प्रथम हम सुदेश दीदी का स्वागत करेंगे। कौन है जो सुदेश दीदी को नहीं जानते हैं? मेरे ख्याल से मेजोरिटी जानते हैं। एक एक ही हाथ है ना उठा है। अच्छा ठीक है। सुदेश दीदी मोर देन 55 इयर्स से ज्ञान में है। उसने ज्ञान दिल्ली में लिया था और साकार बाबा मम्मा की भी पालना ली है तो दादियों की भी पालना ली है। और मुझे ये भी याद है कि जब कुमारियों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो दादी जानकी के साथ सुदेश दीदी भी कुमारियों की ट्रेनिंग में शामिल थी। या करेक्ट? या सो कुमारियों की ट्रेनिंग सो बहुत जैसे कि बहुत अनुभव है ट्रेनिंग देने का और सबको पालना देने की। जैसे हमारे लिए तो हमारे मामा समान है, बहुत प्रयत्न करते हैं उनको वापस लंदन खींचने में, तो देखते हैं क्या होता है। सो 1974 में लंदन आई और दादी जानकी, सुदेश दीदी और जयंती बेन ने बहुत सारी सेवाएं बढ़ाई। परंतु वैसे जैसे बाबा कहते हैं ना कि जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां अपने स्पेशल बच्चों को भेजते हैं, तो 96-97 में फिर उसको जर्मनी। परंतु ऐसे नहीं सिर्फ जर्मनी का ही ख्याल है, सारा यूरोप का। परंतु सुदेश दीदी सारे विश्व में ट्रैवल कर चुकी है और जहां भी जाती है माता की पालना देती है। यू नो जैसे कि बाबा सुप्रीम टीचर है तो सुप्रीम टीचर के समान भी ज्ञान की भी इतनी दीप पालना देती है। तो हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि सुदेश दीदी हमारे साथ है। क्वेश्चंस जो हमने तैयार किए हैं थोड़े, परंतु उनके साथ साथ जैसे कनेक्शन की कोई भी बात होगी या बाद में किसी को याद आएगा तो पूछ लेंगे बीच बीच में। अभी जिसने मुझे क्वेश्चंस दिया है वो तो यहाँ दिखाई नहीं देती है। विघ्न विनाशक स्थिति के बारे में डीप नॉलेज एक्चुअली क्या है, बाबा का क्या मतलब है विघ्न विनाशक बनने का, उसका दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न था जादू मंत्र का प्रभाव कैसे खत्म करे, जो रिद्धि सिद्धि सब आजकल बहुत बढ़ गया है, तीसरा डीप साइलेंस,
किस चीज का दूसरा क्या क्वेश्चन,
जादू मंत्र और रिद्धि सिद्धि का प्रभाव कैसे खत्म करे।
अच्छा
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीप साइलेंस एंड डेड साइलेंस कैसे एक्सपीरियंस करना है। कड़े संस्कार को पूरा कैसे खत्म करे, परिवार में अगर परिवार के प्रति नष्ट मोहा रह करके भी उनकी मनसा सेवा करना है तो क्या उनके प्रति ही करे या सारे विश्व के प्रति करे। नेक्स्ट क्वेश्चन बीज रूप स्थिति का अनुभव, कुछ एक मिनट अवॉइड करती हूँ, नहीं पूछेंगी सब क्योंकि थोड़ा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। और जो आज की कल की मुरली में था ना कि संपूर्णता की हमारी स्टेज कितनी समीप है क्योंकि हमारा संपूर्णता का राज्य होगा, तो वो जैसे कि हम कैसे वो संपूर्णता की स्टेज पर जल्दी पहुंच जाए और उसकी क्वालिफिकेशंस क्या दिखाई देनी चाहिए हमारे में। ओके ओमशा।
एक क्वेश्चन इनका भी है, अंतर्मुखी अवस्था क्या है,
किसका तो लिख कर नहीं दिया ऐसे। ठीक है चलो,
अभी ऊपर आ रही थी ना तो तभी पूछा। ये मेरे को पेपर दे दो तो फिर मैं एक एक क्वेश्चन लेती जाऊंगी। हाँ कोई अर्जा नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने हम बच्चों को विघ्न विनाशक की बात नहीं बताई, क्या बताया, निर्विघ्न बन के रहना है। इसमें फर्क समझ में आया, एक है विघ्न विनाशक अवस्था, विघ्न आए उसका विनाश करो, परंतु बाबा क्या चाहते हैं, विघ्न आए ही नहीं, निर्विघ्न अवस्था। एक होता है संकल्प चले और संकल्प को व्यर्थ संकल्प को स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जावे, और अगर पर चिंतन चलता है तो स्व चिंतन चलाओ तो पर चिंतन खत्म हो जावे। देह अभिमान है तो देह अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो देह अभिमान खत्म हो जावे। वो तो युद्ध करके खत्म करने वाली बात हुई ना, युद्ध करके जीत पाई तो वो तो त्रेता युगी आत्मा हो गई ना। पुरुषार्थ क्या है, युद्ध ही ना करना पड़े। हम योद्धा हैं नहीं हैं, हम विजयी रतन हैं, महावीर हैं। तो निर्विघ्न अवस्था और विघ्न विनाशक अवस्था, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो आज बाबा जो हम बच्चों को कल जो बताया ना, तो कल बच्चों बाबा ने ये स्मृति दिलाई कि अपने जन्म को याद रखो। आपका जो आपका अलौकिक जन्म है ना संगम का, उस जन्म की तीन विशेषताओं को याद करो। इस ब्राह्मण जन्म की तीन विशेषताएं कौन सी हैं? तो बाबा ने कहा, एक तो तुम्हारा जन्म अलौकिक जन्म है। बाबा के जन्म तो है ही है, ये तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि बाबा का जन्म तो तुम मना रहे हो, ये बाबा का जन्म शिवरात्रि मना रहे हो, शिव अवतरण का मना रहे हो। तो शिव अवतरण माना आप बच्चों का भी तो जन्मदिन है ना, तो उसमें हम ब्राह्मणों का तीन विशेषताओं वाला जन्म है। जैसे बाबा सत्य त्रिमूर्ति शिव है, वैसे हम ब्राह्मणों के जन्म में हमको अपनी तीन जन्म की विशेषताएं याद रखनी चाहिए। वो तीन बातें बाबा ने कही, एक तो तुम्हारा जन्म अलौकिक जन्म है, दूसरा ये दिव्य जन्म है, तीसरा ये पूजनीय जन्म है। दिव्य पहली बात अलौकिक, ये लौकिक रीति से जन्म नहीं है। ये अलौकिक में अलौकिकता कौन सी है ये अपनी याद रखो ना। अलौकिकता का मतलब क्या, लौकिक जन्म मां के गर्भ से लेते हैं जन्म, अलौकिक जन्म मां की मुख से लेते हैं। लौकिक जन्म शरीर की मां जो है ना वो फीमेल है, अलौकिक जन्म में हमारी मां मेल मदर है, ब्रह्मा मां है। वो ब्रह्मा मां से हमारा जन्म हुआ है, गर्भ से जन्म नहीं हुआ है। हम तो ब्रह्मा मुख वंशावली, बड़ी मां ब्रह्मा मां, ब्रह्मा मां की मुख वंशावली है। ये अपने आप से बात कर, नशा चढ़ाओ अपने आप को। कोई ने मेरे से अभी अभी पूछा ऊपर आने से पहले, ये अमृत वेले योग अच्छा रहे ना, बोर ना हो मैं, क्या तरीका है? तो ऐसी ऐसी बातें करो तो बोर होएंगे। यानी मैं ब्राह्मण हूं, अगर यही याद रखो, ब्राह्मणों को अमृत वेला करना है बाबा, सतयुग में हमको अमृत वेला नहीं करना पड़ेगा। अमृत वेला अलार्म भी नहीं लगाना पड़ेगा, चिड़िया जो है ना वो चहकेंगी, सुंदर सुंदर गीत गाएंगी और हमारी आंख ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। तो वहां का जो जन्म होगा सतयुग में तो है हमारा, हम पूजनीय मूर्त हैं, परंतु अभी बन रहे हैं पूजनीय देवी देवता है ना। तो अलौकिक जन्म की खूबियां क्या है वो कहले गिनती करो, तो क्या होगा, हमारे संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे ना। ये जो बाबा ने कहा, संकल्प में निर्विघ्न बनो, तो संकल्प किस आधार पर, संकल्प ज्ञान के आधार से चलेंगे ना। विकल्प क्यों चलते हैं, विकारों के कारण विकल्प चलते हैं, अज्ञानता के कारण व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अज्ञानता के कारण पता नहीं होता ना, शायद ऐसे होगा, अनुमान लगाते हैं, शायद ऐसे हुआ होगा, पता नहीं ये मेरे लिए ऐसे सोच रहा है, अनुमान। ज्ञान पक्का नहीं है कि सोच रहे हैं कोई, और ना केवल ऐसे किसके मन को पढ़ने वाले बन गए हैं, मन के संकल्प को जानी जरनहार बन गए हैं, कि दूसरे के मन के संकल्प को जान जावे, जानी जरनहार तो नहीं बने हैं, पर तो अनुमान लगा रहे हैं अज्ञानता के कारण। जान जाते हैं ना जब संकल्प को, तब तो बात करके क्लियर कर लेते हैं, जब नहीं जानते ना किसी के संकल्प को तो व्यर्थ चिंतन चलता रहता है, व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। तो अभी अपनी संपूर्णता की इस स्टेज पर पहुंचने से पहले तो ये बाबा ने निर्विघ्न बनने का है, विघ्न विनाशक करने तो जरूरत ही नहीं बनेगी, फिर जरूरत ही नहीं रहेगी विघ्न को विनाश करने की, विघ्न आया ही नहीं तो विनाश क्यों करेंगे, आग है ही नहीं तो बुझाएंगे किसको, बस आग लगी है तो बुझाएंगे ना, आग ही ना लगे तो बुझाने की क्या जरूरत है। दुश्मन की हिम्मत ही ना हो हमारे हमारे परवार करने की तो दुश्मन को जीतने की तो जरूरत ही नहीं है, बीमार हुए ही नहीं है तो बीमारी को हटाने की क्या जरूरत है। तो बाबा तो इस लेवल पर हमको पहुंचाना चाहते हैं, निरसंकल्प अवस्था, निर्विकल्प अवस्था। तो अभी वो संकल्प शुद्ध का आधार क्या है, ज्ञान। और संकल्प बाबा ने कहा मनसा की शक्ति है, संकल्प क्या है, ये मन की शक्ति है। अब मन की शक्ति बढ़े कैसे, योग बल से। मन की शक्ति जितना जितना बाबा से योग होएगा उस हिसाब से योग की शक्ति बढ़ेगी ना। और बाबा ने कहा क्योंकि अव्यर्थ संकल्प चलता है तो समय वेस्ट होता है, और कोई चीज वेस्ट होती है तो पश्चाताप होता है। कोई भी चीज समझो ऐसे फालतू खर्च हो गई ना, वेस्ट हो गई, चलो खर्च किया किसी कारण से तो खुशी होगी, परंतु वेस्ट किया तो दुख होगा। तो समय बाबा ने कहा समय को वेस्ट नहीं करो, समय को बेस्ट करो, समय को बचाओ, वेस्ट होने से बचाओ। अच्छा क्यों बचाएं, समय को वेस्ट होने से बचाने से क्या फायदा है, क्या बताया बाबा ने कल, कि अगर बचाओगे तो समय को सेवा में लगा सकोगे। समय बचा ही नहीं, समय वेस्ट हो गया, सेवा में सफल कैसे करेंगे। तो ये अलौकिक जन्म जो है ये बाबा के साथ विश्व कल्याण करने के लिए जन्म मिला है, ये अलौकिक जन्म है, और ये अलौकिक जन्म विश्व कल्याणकारी बाप के साथ विश्व को परिवर्तन करने के लिए समय मिला है, जन्म मिला है। कितना उमंग उत्साह जीवन में, सारे विश्व को परिवर्तन करना ही है। क्यों करना है, क्योंकि विश्व का राज लेना है, और विश्व का राज लेना है तो विश्व राज अधिकारी वो विश्व कैसा होएगा, वो विश्व संपूर्ण विश्व होएगा। तो संपूर्णता क्या है, संपूर्णता क्या है, जिसमें जरा भी दुख का नाम निशान ना हो। वो संपूर्णता जहाँ दुख का नाम निशान नहीं, वो जीवन दिव्य जीवन है। और दिव्य जीवन का आधार है सर्व गुण संपन्न। तो ये जो जीवन है ये हमारा दिव्य जीवन है, अलौकिक तो है ही कि अलौकिक। फिर और खूबी अलौकिक की क्या है कि जैसे जन्म लेते हैं ना लौकिक जन्म, तो लौकिक जन्म लेते हैं तो माँ बाप बताते हैं तुम्हारा फलाने घड़ी फलाने दिन पर फलाने टाइम पर जन्म हुआ था, यहाँ कोई और नहीं बताता, हम बताते हैं मेरा किस घड़ी किस समय मुझे ज्ञान का तीर लगा था और मैं बाबा का बन गया। कौन सी बात मुझे निश्चय में आ गई और मैंने बाबा को पहचान लिया, मेरा जन्म अलौकिक बन गया। फिर उस जन्म में, जन्म तब होता है जब मर जावे पुराने जन्म से, यहां जन्म लेके फिर पुराना खत्म होता है। वो मर गया तो जन्म लेंगे, यहां जन्म लेके पुराने से मरना होता है। समझा, अलौकिक जन्म की लिस्ट निकालो। अलौकिक जन्म जो बाबा ने कहा तो अलौकिक में किन किन बातों में हमारे ये ब्राह्मण जन्म की अलौकिकता है, तो बताया ना पहले कि वो लौकिक जन्म तो माँ के गर्भ से जन्म लेते और विकार से जन्म लेते। उस लौकिक जन्म में साकारी माँ बाप होते हैं और इस अलौकिक जन्म में बाप निराकार है माँ साकार है। उस लौकिक जन्म में माँ फीमेल होती है, यहाँ अलौकिक जन्म में मेल हमारी मदर है, ब्रह्मा माँ है और ब्रह्मा माँ के मुख से हमने जन्म लिया है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली बन गए हैं। यानी अलौकिकता की थोड़ा अंदर अंदर खुशी तो लेके आओ ना, उमंग उत्साह जिसको बाबा कहते हैं, तो अंदर जो उत्साह भरेगा तो अलौकिक जीवन से फिर ऑटोमेटिकली जब संकल्प श्रेष्ठ होएंगे, तो बाबा ने कहा जब आपके संकल्प श्रेष्ठ है मनसा श्रेष्ठ है तो वाचा कर्मणा तो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएगी, क्योंकि मनसा के आधार से हमारी वाणी है और हमारा कर्म है और हमारा संबंध है और हमारा व्यवहार है। और फिर हमारा जो ये जो जन्म है ये दिव्य अलौकिक दिव्य जन्म भी, अलौकिक तो है पर दिव्य गुण संपन्न जन्म है। ये परलौकिक परम पिता परमात्मा जो जो आत्मा डिवाइन एनर्जी है ना, प्योर एनर्जी है, उसका आवाहन हो रहा है। जैसे बाबा का अवतरण जन्मदिन कहलाता है ना, तो हमारी आत्मा की जो दिव्यता है वो जागृत हो रही है, आत्मा की जो पवित्रता है, आत्मा की जो श्रेष्ठता है, उसका स्वरूप बन रहे हैं। जन्म माना रूप मिल जाना ना, जन्म मिला तो जिस्म वाला रूप मिलता है ना, तो हमको ये ब्राह्मण अलौकिक जन्म मिला, हमारा रूप कैसा हो गया, शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप पवित्र स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप, तो दिव्य रूप मिल गया। फिर इन गुणों के अभ्यास से हम देवता बनते हैं, वो संस्कार लेके जाते हैं, जिसको कल बाबा ने ध्यान दिलाया कि तुम ये अटेंशन दो संस्कारों को परिवर्तन करने का, संकल्प में संस्कार परिवर्तन हो जावे। जितनी बाबा एक एक शब्द में कितनी गहराई है, तो कौन सी दुनिया में कितने फिर दैवी जन्म है। सतयुग वाला जन्म जो है वो इतना श्रेष्ठ जन्म जो है, वो पूजनीय मुहूर्त का जन्म है। तो तीन जन्म बताए अलौकिक, तीन बातें जन्म में जन्म बताया ना, तो अलौकिक, दिव्य और पूजनीय। तो वो देवी देवताएं का जो जन्म है, जिसमें प्रकृति भी सुंदर है, तन भी पवित्र है तो मन भी पवित्र है। और वो कब बनेगा, जो जैसे बाबा ने विदेशियों से बात करते कहा, तन और मन दोनों खुश हैं, तो तन खुश माना हमारी इन कर्म इंद्रियों से, हमारे जो कर्म हैं वो हम इतने श्रेष्ठ कर्म करें जो खुशी अनुभव होवे। कारण खाली तंदुरुस्त रहने की बात नहीं, दुरुस्त कर्म भी होवे, श्रेष्ठ कर्म होवे। विकर्म की विस्मृति, विकर्म विनाश, पिछला विकर्म विनाश और अभी कोई विकर्म होगा ही नहीं, दिव्य कर्म होगा। और श्रेष्ठ कर्म करके कल्याणकारी कर्म करेंगे तो पूजनीय मूर्त बन जाएंगे ना। तो ऐसी मूर्ति जो एक एक अंग की पूजा होती है, तो देवताओं को जो है ना, नैना देवी, नैन चरण, चरण की पूजा, देवताओं के चरणों की पूजा, देवताओं के हस्तों की पूजा, एक एक अंग की पूजा होती है, पूजनीय मुहूर्त। तो ये अपना बाबा ने कहा, इतना अपने जन्म की स्मृति रहे, विश्व परिवर्तन के अलौकिक कार्य में हम बाबा के साथ मददगार हैं, बाबा के साथी हैं, दिव्य राज ले रहे हैं, दिव्य जन्म है, दिव्य राज लेने के लिए। तो अलौकिक, दिव्य और पूजनीय, इस जन्म की स्मृति रहे, ज्ञान ज्ञान बुद्धि अंदर चलता रहेगा तो अज्ञानता के व्यर्थ संकल्प चलेंगे नहीं ना। फोन माइक से ही बात करके करेंगे, नहीं तो सुनाई नहीं देता। अभी अलौकिक, अलौकिक जन्म है ना, तो आत्मा की दिव्यता जो अभी बताया ना, आपके आने से पहले ये बता लिया था, दिव्य स्वरूप आत्मा, आत्मा जन, इसका ये इसी परमात्मा की ज्योति से हमारी ज्योत जगी ना, तो बुझी हुई ज्योत जैसे जग जाती है तो ज्योत प्रकट हो गई ना, हमारी दिव्यता का स्वरूप प्रकट हुआ ना अभी, उससे फिर हमारे जो दिव्य गुण हैं, दिव्य गुणों की धारणा से हमारी कर्म इंद्रियां शुद्ध हुई, तो वे कर्म इंद्रियों से, श्रेष्ठ कर्म से हम भविष्य में देवता, पूजनीय मुहूर्त देवता बनते हैं ना। तो ये हमेशा स्मृति रहे ना, और ये तब रहेगा जब हम, अब भी हमको पता है कि बाबा हमारे साथ है, हम बाबा के साथी बन के कार्य कर रहे हैं, ये बाबा के साथी बन के कार्य कर रहे हैं तो उमंग उत्साह रहेगा ना, निमित्त बाबा के साथी बन करके कार्य कर रहे हैं, तो फिर अपने कर्मों को भी साक्षी होकर के देखेंगे ना। तो ये जो आपने प्रश्न लिखा कि विघन विनाशक स्थिति के बारे में डीप नॉलेज सुनाओ, तो विनाशक से पहले कल बाबा ने डीप सुनाई, निर्विघ्न अवस्था बनाओ, और निर्विघ्न अवस्था से अवस्था अगर आ गया विघ्न, तो फिर विघ्न विनाश तक गणेश जी को कहा जाता है। तो नया जन्म यानी पुराने जन्म से नया जन्म ले लो। गणेश का जन्म कैसे हुआ, ये जो ऊपर का हिस्सा था ना, ये कट गया, नमा लग गया, ये जो आंखें, कान, नाक, मुंह, ये सारा नवा लग गया, पुराना कट गया। मतलब देखने का तरीका, सुनने का तरीका, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका, सूंघने का तरीका, वो विधि बदल गई। तो चेहरा जो है ना ऊपर की, भाई गर्दन कट गई, शरीर वो ही रहा, सिर नवा लग गया। अब इस मुख में, इस बाहर का जो सिर है, इसमें ये आंख भी है, कान है, नाक है, मुंह है, सोच समझ है। तो ये सारी जब अलौकिक जन्म हुआ तो ये सारे बदल गए ना। तो इसलिए ये अलौकिक जन्म है हमारा, जो हम शरीर में रहते अशरीरी बन जाते हैं। तो जब हमारा सोच बदला, किस आधार पर? बाबा की दी हुई विजडम के आधार से। तो कहा जाता है एज वाइज एज एलिफेंट, महारथी, हाथी पर सवार, एज वाइज एज एलिफेंट, ऐसा बुद्धिमान जैसा हाथी, ऐसा मस्त जैसे हाथी। हाथी मस्त रहता है ना, उसको कोई गली में चलते हुए कुत्ते भौंकते हैं उसको, उसकी परवाह नहीं है। तो कोई निंदा करता है, कोई अपमान करता है, कोई गालियां देता है, कोई विरोध करता है, अपनी रूहानी मस्ती में है, तो दुनिया क्या करेगी, दुनिया क्या सोचेगी, ये सोच नहीं चलता। तो विघ्न विनाशक, यानी विघ्न आएंगे फिर वो विघ्न विनाशक कहा जाता है। विघ्न विनाशक की स्थिति के बारे में डीप नॉलेज, यानी बाबा के बच्चे गणेश स्वरूप बन जाओ। तो जितना जितना मैं अपने आप को, नया जन्म मतलब हो गया ना, रूहानी मस्ती रहेगी ना, उस रूहानी मस्ती को कल बाबा ने कहा अपने जीवन में उमंग और उत्साह रखो। विश्व कल्याण का कार्य करना ही है, अपना नया राज लाना ही है, और बाबा अकेले कार्य नहीं कर रहे हैं, बाबा के साथी बन करके ये कार्य कर रहे हैं। उसकी तैयारी, ये नवी दुनिया जो संपूर्णता की दुनिया बन रही है, उसकी तैयारी। तो संपूर्णता की दुनिया क्या है? तो संपूर्णता की दुनिया जिसमें दुख, अशांति, द्वेष, क्रोध का नाम मात्र भी नहीं है, यानी उस कोई अंश मात्र भी नहीं है। संपूर्ण सुख की दुनिया, संपूर्ण दुनिया माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक दुनिया, वो है संपूर्ण दुनिया। तो संपूर्ण दुनिया जो संपूर्णता की दुनिया है, वो निर्विघ्न, मैं बन निर्विघ्न स्थिति से तैयार कर रहा हूं, तो उसकी चेकिंग चाहिए। ये चेक करो। तो क्या चेक करें? कि संकल्प में भी विघ्न नहीं है, संकल्प भी व्यर्थ नहीं है। बाबा ने कहा कि चलो उल्टा कर्म तो नहीं है, बुराई तो कोई का क्वेश्चन ही नहीं है। चलो अभी आपको या बुराई को जीतो, कोई विकार को जीतने की हो तो कोई बात नहीं, परंतु संकल्प भी व्यर्थ न जावे। छोटी छोटी बातें जो है ना, अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो वो धोखा दे देती हैं। छोटी छोटी बातें धोखा देती हैं, और वो धोखा देके दुखी कर देती है। तो इसलिए हमारे पास किस चीज की चाहिए तैयारी, क्या करनी है? अटेंशन, तो निर्विघ्न रहने का तरीका क्या है? अटेंशन। अटेंशन है तो टेंशन कोई नहीं है, टेंशन होता है तो कोई ना कोई भूल होती है, टेंशन होता है तो बुद्धि मन बुद्धि भारी हो जाती है, टेंशन होता है तो दूसरों के साथ जो हमारा व्यवहार है वो स्नेह संपन्न व्यवहार नहीं रहता, टेंशन है तो विचार दुविधा वाले होते हैं, दुविधा में कॉन्फ्लिक्ट अंदर जो है, ये करूं या नहीं करूं, ये करूं या नहीं करूं, डाउट वाले होते हैं, होएगा कि नहीं होएगा, पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कल कहा सफलता संपन्न, इसमें सफलता मुहूर्त बने, खास बाबा ने शब्द यूज किया, तो इसमें संपूर्णता में हमको इतना अटेंशन हो जिसमें हम सफल हों में, और उसके लिए बाबा ने कहा दो बातें चाहिए, हाथ उठाओ। कौन सी दो बातें कही थी? व्यर्थ व्यर्थ संकल्प न चले, उसके लिए भी कहा दो बातें हैं, दो बातें हैं तो हाथ उठाओ, अगर दो बातें नहीं है तो हाथ नहीं उठाओ। नहीं तो हमेशा कभी नहीं कहता हाथ नहीं उठाओ, कल बाबा ने कहा अगर ये दो बातें हैं तो हाथ उठाओ, नहीं है तो नहीं हाथ उठाओ। कौन सी दो बातें थी? एक तो हिम्मत, दूसरी ताकत। हिम्मत हिम्मत और ताकत, हिम्मत है जो है ना वो उत्साह और उमंग आता है ना, तो करेज, एक करेज, दूसरा शक्ति। हिम्मत माना करेज, तो हिम्मते मददा मददे खुदा, तो हिम्मत रखेंगे तो मदद बाबा की मिलेगी, हिम्मत नहीं रखेंगे मदद कैसे मिलेगी। एक कदम हिम्मत का रखेंगे तो एक कदम में पद्मों की कमाई कराने वाला बाबा पद्मपति बनाएगा, पद्मों की मदद कराएगा। परंतु दृढ़ता का आत्मबल भी चाहिए, दृढ़ता की शक्ति चाहिए। हिम्मत रखी फिर कोई ना कोई छोटी छोटी बात का विघ्न आया, ताकत खत्म हो गई। तो इसीलिए वो यानी योग मेरा इतना शक्तिशाली रहे जो फिर मेरे अंदर ताकत रहे उस विघ्न को मैं जीत सकूं। तो तब बाबा ने कहा, फिर पीछे तो कहा कि सब उमंग उत्साह से उठा रहे, इसलिए शाबाश शाबाश शाबाश, सारे तुमने सारे हाथ उठा रहे हैं, फिर तो उमंग उत्साह दिलाया, पर पहले ये बात ध्यान में दिलाई। तो हम अपने आप से पूछे संपूर्णता में अभी भी संपूर्ण यानी पूर्ण रीति से हमारा अटेंशन हो, थोड़ा छोटा मोटा नहीं, इतना संपूर्ण अटेंशन कि हम जितने समय के लिए अपना टाइम फिक्स करते हैं कि चलो अच्छा अभी चार घंटा जो है ना कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, चार घंटा कोई फालतू बोल नहीं बोलेंगे, तो इतनी ताकत अपने आप में, अपने मन को कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, वो ताकत दृढ़ता में डिटर्मिनेशन में, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर जिसको बाबा ने कहा शक्ति अथवा ताकत। स्टॉप कहा तो स्टॉप, सुना था ना कल बाबा ने कहा स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जावे। तो जब इतना अपने अपना हिम्मत है तो इस हिम्मत से मदद तो मिलती है ना, इसमें सफलता मिलेगी, टाइम फिक्स किया और उतने समय तक अटेंशन पूरा रहा, संपूर्ण अटेंशन से, संपूर्ण चेकिंग से, हिम्मत से और ताकत से सफलता मिलती है। और फिर चेक करो मिली कि नहीं मिली, तो इसका मतलब है दोनों में से कोई एक बात मिक्स मिस हो गई है ना। जैसे चलना है तो दोनों कदम पैर दोनों चल रहे हैं तो तेज चलेंगे ना, पंख दोनों होंगे तो उड़ेंगे ना उमंग उत्साह के। एक कदम एक पैर रखा है दूसरा पैर नहीं है तो ताकत वाली मूवमेंट नहीं होगी ना, तेज नहीं चल सकेंगे ना, तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकेंगे ना। तो इसलिए बाबा ने कहा जब समय को बचत कर लिया तो सेवा तीव्र पुरुषार्थ की सेवा में लगाएंगे। दूसरी बात, एक तो अपने तीव्र पुरुषार्थ की सेवा में लगाएंगे, दूसरी कौन सी बात, वो समय को किसमें सफल करेंगे, निर्विघ्न रहने की, वो तो और किसमें सफल, वो तो निर्विघ्न हुए तो विघ्न आया ही नहीं ना। निमित्त बन के आपके निर्विघ्न रहने के वाइब्रेशंस दूसरी आत्मा को प्रेरणा देंगे, जो जो तीव्र पुरुषार्थी नहीं है ना। ध्यान बाबा ने खिंचवाया कि आप जो बाबा के जो अपने पर अटेंशन और चेकिंग देने वाले बच्चे ऐसे निमित्त बनेंगे ना, तो आपके वाइब्रेशंस जिन आत्माओं का पुरुषार्थ तेज नहीं है उनको भी प्रेरणा देगा, उनको भी उनके अंदर भी उत्साह मंगाएगा ना। तो समय किस लिए सफल किया, अपने पुरुषार्थ को तेज करने में, और उससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट किए, क्योंकि आप व्यर्थ चिंतन नहीं चल रहा है तो आपका चेहरा चमकता रहेगा ना। व्यर्थ चिंतन नहीं है, चिंता ही नहीं है कोई, व्यर्थ चिंतन है, पर चिंतन है, तो चेहरा जो है ना चिंता वाला होएगा, क्वेश्चन मार्क वाला होएगा। पर चिंतन है तो परेशान होएंगे जरूर, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। चेहरा में चमक कहां से आएगी, चेहरे में तो परेशानी आ जाएगी ना। अब परेशान चेहरा क्या सेवा करेगा, चमकता चेहरा सेवा करेगा ना, चेहरे से ही दर्शन मुहूर्त बन जाएंगे ना, दृष्टि से ही नजर से ही दूसरों को निहाल कर सकेंगे ना। तो वो जो अंदर के वाइब्रेशंस क्या है, मन के संकल्पों के प्रवाह को वाइब्रेशन बनाया जाता है, मन का संकल्प शुद्ध संकल्पों का प्रवाह ही तो वाइब्रेशंस बनेगा। वाइब्रेशन क्या है, वायुमंडल को परिवर्तन करने की चीज। और वायुमंडल क्या है कि जो आप सोचते हैं ना, उस सोच से जो आपकी श्वास चलता है, सोच के साथ जो श्वास चलता है ना, उस श्वास से वायुमंडल बनता है। समझो मानो कोई गुस्से से आपने बात की, अब उससे वायुमंडल जो है वो टेंशन वाला बन जाएगा, कमरे में ही पता चलेगा गर्म हवा है, कोई बड़ा गर्मी वाला है। अब गर्मी कोई बाहर की गर्मी थोड़ी है, उस स्थान का ही टेंशन वातावरण जो है ना, वो व्यक्ति तो कोई नहीं, अभी आपस में लड़ तो नहीं रहे हैं, लड़ाई तो एक घंटा पहले हुई थी, और कोई अचानक घर में आया तो महसूस होता है यहां पर कुछ टेंशन था, वाइब्रेशंस आते हैं ना। तो जैसे व्यर्थ के वाइब्रेशंस आते हैं, गुस्से के वाइब्रेशंस दिखाई पड़ते हैं, कोई गंदी वृत्ति दृष्टि ऐसी कोई कर्म हुआ उसके वाइब्रेशंस होते हैं, कर्म व्यवहार में आ गया ना उसके वाइब्रेशंस होते हैं ना। कच्ची सब्जी है इतनी सुगंध नहीं आएगी, पक गई ना कमरे के बाहर भी सुगंध जाएगी। वो ब्रसल्स स्प्राउट्स होते हैं ना, समझे ना, अगर अगर आपने होते हैं ना ये ब्रसल स्प्राउट्स जो ऊपर छोटे छोटे गोल गोभी की तरह होते हैं, कच्चे हैं तो कोई सुगंध नहीं आएगी, पकना शुरू हो गए ना सुगंध आएगी। दाल है कच्ची है सुगंध नहीं आएगी, अच्छी सुगंध आएगी, पक्की तो सुगंध आएगी ना। तो अभी ये जो हम अपने आप देखे कि हमारे अच्छे सुगंध वाले वाइब्रेशन फैला रहे हैं, खाली सूजी रखी है तो सुगंध नहीं आएगी, खाली शुगर रखी है तो सुगंध नहीं आएगी, हलवा बनेगा तो सुगंध आएगी, पकाएंगे तो अवस्था पक्की होगी, कच्ची होगी, तो वाइब्रेशंस। निमित्त बाबा ने कहा आप तीव्र पुरुषार्थी जो निमित्त बच्चे बच्चे हो उनके वाइब्रेशंस वायुमंडल को बदलेंगे। तो हम इतना जो जो बाबा हमको ज्ञान दे रहे हैं, जो बाबा हमको योग सिखा रहे हैं, उस आधार से हम इतना अपने अंदर जो है आत्मिक बल भर करके कर्तव्य करें ना। तो बाबा मुंह तो बहुत अच्छा दिला रहा है, वाह बच्चे वाह बच्चे वाह वाह वाह, और साथ में दिल की दुआएं भी दे रहे हैं, दिल का प्यार भी दे रहे हैं, इनाम भी बता रहे हैं मिलेगा। तीनों चीजें, तीनों चीजों के लिए बाबा ने कहा, प्यार और दिल का, दिल की दुआएं तो दिल आराम दे रहे हैं, पर पुरुषार्थ करके रिजल्ट दिखाएंगे संपूर्णता सफलता का, तो इनाम बाबा से मिलेगा ना। तो इसीलिए निर्विघ्न रहेंगे तो इनाम मिलेगा, विघ्न विनाशक बनेंगे तो प्रेज मिलेगी, विघ्न विनाशक मिलेंगे तो सब कहेंगे बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, पर बाबा ने कहा निर्विघ्न रहेंगे तो इनाम पहले से ही बाबा दे देगा ना। तो दिल की दुआएं भी मिल रही हैं, दिल का प्यार भी बाबा से मिल रहा है, तो हम इतने बाबा के, परंतु सदा ये रहे बाबा के साथ हूं। ये बाबा ने कल जो बताया ना, बाबा को साथ रखो, तो उस हिसाब से बाबा की ऑटोमेटिकली ये व्यर्थ की सौगात बाबा को दे दी तो इनाम बाबा से मिल जाएगा ना। तो रिजल्ट तो बाबा को बतानी है अपने संपूर्णता की, यानी स्वर्ग के संपूर्ण राज्य लेने में संपूर्ण सफलता प्राप्त करने की। बाकी जो संपूर्णता की दुनिया है वो तो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है ना, वो जो दुनिया है उसमें तो दुख का नाम निशान नहीं है, पुरानी दुनिया की कोई चीज नहीं होगी। तो ये जो सतयुगी संपूर्ण दुनिया वाली बात है वो अभी से संपूर्णता की बात है ना। फिर हम बच्चों का कड़े संस्कारों को कैसे खत्म करना है, अब वो तो योग बल से खत्म करेंगे ना। संकल्पों को खत्म करना है, संस्कारों को भी खत्म करना है, संकल्प अभी की चीज है, और संकल्प जो अभी की चीज है वो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, और ध्यान अटेंशन रखना है संकल्पों को खत्म करने का, अटेंशन देना है संस्कारों को खत्म करने के लिए, योग पर ध्यान देना है, क्योंकि संस्कार जो है ना वो प्रत्यक्ष चीज हो गई है ना, पक्की चीज हो गई है ना, तो उसको भस्म करने का, वो बीज रूप में भी है तो फल रूप में भी है। संस्कार जो है ना वो व्यवहार में आ रहा है तो फल दिखाई दे रहा है, वो अभी नहीं व्यवहार में आया तो बीज है, तो बीज व्यवहार में ना आवे, संस्कार व्यवहार में ना आवे, उसके लिए क्या करेंगे, बीज को भूनना पड़ेगा ना, बीज को भून दो ना, उगता नहीं है। तो योग युक्त स्थिति, जितना जितना हमारा योग पर ध्यान रहेगा ना उतना उतना हमारी स्थिति जो है वो, जो बाबा कहते फिर योग के बल से ईश्वरीय गुण काम करने लग जाएंगे ना। अंदर खुशी आएगी, आत्मिक स्थिति से कर्म करेंगे। योग माना क्या? योग सिर्फ ऐसे भक्ति की तरह याद तो नहीं कर रहे ना, योग माना संबंध जुटा हुआ है। योग माना बाबा के गुणों का हम आत्माएं अनुभव कर रही हैं। नहीं तो कहते हैं मेरा योग नहीं लगा, अभी ज्ञान तो है मैं आत्मा हूं, ये भी पता है मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं, ज्ञान तो है ना, पर कहते आज मेरा योग नहीं लगा, आज बहुत अच्छा योग लगा था। अच्छा योग लगा तो क्या हुआ था अच्छे योग में? भाई अनुभव बहुत अच्छा था। किस बात का अच्छा अनुभव था? बाबा के प्यार का अनुभव हो रहा था, बहुत अच्छा था। बाबा की शक्ति बड़ी महसूस हो रही थी। बहुत अच्छा अनुभव क्या था? एकदम रियलाइजेशन हुई जैसे कि बाबा हमको इस वतन से पार ले गया। अनुभव हुआ ना, किस चीज का अनुभव हुआ? लाइट का अनुभव हुआ, माइट का अनुभव हुआ, शक्ति का अनुभव हुआ, प्रभु प्रेम का अनुभव हुआ। ये अनुभव का नाम योग है ना। तो वो अनुभव जो है वो शक्ति बन गई ना आत्मा की। तो उस शक्ति से वो जो पुराना संस्कार है वो कर्म में नहीं आएगा ना। बीज जो था ना, कोई समझो मानो हम आत्मिक स्वरूप में टिके हुए हैं, अशरीरी स्थिति में हैं, योग जग लगाने के लिए तो आत्मा समझ के योग लगाएंगे ना। कर्म में फिर योग भर जाएगा ना, खाली योग बैठ के योग लगाने की बात नहीं, कर्म योगी बन जाएंगे। कर्म योगी बन जाएंगे तो विकर्म नहीं होंगे ना। यानी कर्म में योग्य है तो कर्म श्रेष्ठ होगा, तो वो जो पुराना संस्कार था वो व्यवहार में आया ही नहीं ना, बीज बुन गया ना। योग की लगन में अगन में वो बीज बुन गया, बुन गया, बुने हुए बीज को उगाओ तो उगता नहीं है, वो ताकत खत्म हो गई, वो जो व्यर्थ की ताकत थी ना वो खत्म हो गई। परंतु योग कम है, सिर्फ समझो मानो धूप में रख दिया है तो गर्म तो हो गया है, ऐसे नहीं कि उगेगा नहीं, गर्म हो गया है, पर अगन में लगन की अगन में भुनेगा तब नहीं उगेगा ना बीज। तो खाली उमंग उत्साह है, उमंग उत्साह है योग का, वो जैसे धूप में रख दिया, गर्मी लग गई उसको, पर पक्की स्थिति में अशरीरी स्थिति। तो क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न पूछा है, अशरीरी अवस्था क्या है, बीज रूप की स्थिति क्या है? अभी वो ये बीज अलग, ये जो बताया ना संस्कारों का बीज, वो अलग चीज है। अभी योग के कनेक्शन में बीज रूप स्थिति क्या है? अब अशरीरी विदेही, हाँ, तो अशरीरी विदेही बीज रूप अव्यक्त, ये सारी ये स्टेजेस है। पहली स्टेज है अशरीरी, अशरीरी यानी शरीर से मैं न्यारी आत्मा हूं, बॉडीलेसनेस। तो उसमें वो जो हमारे ये देह के आकर्षण है ना, कर्म इंद्रियों का आकर्षण, उससे न्यारे हो जाते हैं। उसके लिए चाहिए अंतर्मुखता। उसमें जो है ना उसका अभ्यास क्या है, अंतर्मुखती स्थिति बढ़ती चली जाएगी, इंट्रोस्पेक्शन। बाहर मुखता में ये जो हमारी कर्म इंद्रियां है ना, शरीर, ये एक्सप्रेस बहुत करता है दूसरों से बात करने में। दूसरे क्या देख कर रहे हैं वो देखेंगे, दूसरे क्या बोल रहे हैं वो सुनने में ध्यान जाएगा, दूसरे ने क्या नहीं बोला वो हम बोलने के लिए कोशिश करेंगे, क्या बोला क्यों बोला उसमें करेक्शन। तो ये जो बाहर का मुख है, ये शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उसको ज्यादा यूज करते हैं, उसको बाहर मुखता कहते हैं। अंतर्मुखता में आत्मा अपने अंदर से बात करती है, अपनी चेकिंग अपने आप करती है, अपने आप को देखती है। जो बाबा से बातें सुनी है वो अपने आप को अपने आप अंदर दोहराती है, बाबा से बातें जो सुनी ना, जो सुनी ना उस पर अंदर विचार करना, वो जैसे बार बार अंदर सुनना, जैसे कल की मुरली सुनी, अच्छा अलौकिक जन्म है, अच्छा ये हमारा जन्म दिव्य जन्म है, ये पूजनीय जन्म है, ये कल्याणकारी जन्म है, तो जो बाबा ने कान में सुनाए ना शब्द पड़े, वो कान अंदर से फिर से अपने आप को सुनाते रहना, बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता में चले जाएंगे, फिर जो बोलेंगे ना जो बाबा ने सुनाया वो सुनाएंगे तो खुशी होगी। तो अव्यक्त यानी दूसरे के व्यक्तियों का प्रभाव नहीं और अपने देह का भान नहीं, यानी अशरीरी जिसको कहते हैं, अशरीरी बॉडीलेस, उसका रिजल्ट और आधार दोनों है सोल कॉन्शियसनेस, बेसिस भी फाउंडेशन भी आत्मिक स्थिति है और रिजल्ट भी आत्मिक स्वरूप है, फिर यानी स्थिति इतनी जो उसका स्वरूप बन गए, वो गुण काम करने लग गया, स्मृति से स्वरूप बन गए, स्थिति बन गई। सो बॉडी लेस में फिर सोल कॉन्शियस, तो सोल कॉन्शियस से ही कॉन्शियस हो गई जो एनर्जी आत्मा की, आत्मा के जो गुण हैं, ज्ञान शांति प्रेम पवित्रता आनंद, वो उसको उसने आत्मा ने मान लिया, हाँ बराबर ये है, देही अभिमानी, देह में रहने वाली आत्मा ने अंदर निश्चय कर लिया, हाँ बराबर ये मेरी चीज है, जैसे देह अभिमान में पक्का निश्चय है ना मैं फलाना हूँ, तो देह को धारण करने वाली आत्मा ने पक्का निश्चय कर लिया, न केवल मन का संकल्प शुद्ध है पर बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती बन गए। तो उसमें क्या है फिर, वो जो व्यक्तियों का प्रभाव नहीं रहेगा, तो जितना जितना ये आत्मिक स्थिति में स्थित हुए, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हुए, उतना अव्यक्त स्थिति बनती चली जाएगी, अशरीरी आत्मिक स्थिति के बल से हैवीनेस नहीं है, लाइटनेस है, फरिश्ता जैसा रूप है, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, एंजेलिक फॉर्म। बॉडी है पर लाइट की बॉडी में चल रहे हैं, इस शरीर में बैठे हैं पर जैसे दुनिया करती है, व्यक्ति है, वो बाहर का व्यक्तित्व नहीं है, अव्यक्त है। यानी अभी आप देखेंगे अव्यक्त बाप दादा बैठे तो है साकार शरीर में, गुलजार दादी के तन में आवाज हो रहा है, कोई बोल रहा है, बाबा टोली देना चाहता है, कोई उन टोली उठा करके पीछे रख देंगे, बाबा फल, बाबा एकदम न्यारा है, कोई क्या कर रहा है उसका असर नहीं है, ये भान नहीं है, ये अभिमान नहीं है, मैं ये देना चाहता हूं तुम मुझे देने नहीं दे रहे। प्रैक्टिकल में हर बारी देखते हैं तो कितना एकदम न्यारा और प्यारा अव्यक्त स्थिति है, डिटैच्ड स्थिति, और अपने जो गुणों का स्वरूप है उसी को ही प्रैक्टिकल में व्यवहार में आ रहा है। जैसे रिश्ता अपना शरीर से भी अपना रिश्ता बदल गया, दूसरों के साथ भी शरीर के भान का रिश्ता बदल गया, तो फरिश्ता स्वरूप बन गए ना। तो उस स्थिति से जब स्थित चले जाते हैं तो मन के व्यर्थ संकल्प नहीं है, पर चिंतन नहीं है, दोष देना नहीं है, दोष दृष्टि नहीं है, तो संकल्प कम होते 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 एकदम साइलेंस, वो निराकारी स्थिति बन गई, शरीर में रहते हुए जैसे निराकारी, उस निराकारी स्थिति से फिर बीज रूप अवस्था बनती है, यानी सब कुछ समेट लिया, सब कुछ समा दिया अंदर, और वो बीज रूप स्थिति से डेड साइलेंस होती है। बीज रूप स्थिति से एकदम स्टिलनेस, साइलेंस, टोटल साइलेंस। जैसे बाबा शांत, तो वो शांति के सागर की गहराई में अंदर उमंग उत्साह भी है परंतु टोटल साइलेंस भी है। तो इसलिए बाबा का, बाबा बीज रूप भी है, आनंद का सागर भी है, शक्तिशाली भी है। तो बीज शक्तिशाली स्टेज भी है, कंप्लीट साइलेंस भी है, आनंद का सागर भी है। तो वो जैसे स्टेज, जैसे बीज रूप स्थिति में, जैसे कि एकदम सारे विस्तार को सार में समा लिया है, अभी एक्सप्रेस कुछ नहीं हो रहा है तो सही ना, बीज में पेड़ तो समाया हुआ है ना, परंतु ना धरती से कनेक्शन है, ना पानी से कनेक्शन है, किसी चीज का प्रभाव नहीं है। तो बीज रूप स्थिति माना सब वाइब्रेशन से, दूसरों की वृत्ति से, दूसरों के व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं है, डेड साइलेंस है। अपनी पर्सनल स्टेज बीज रूप है, प्रभाव से परे। टोटली डिटैच्ड, तो वो शक्तिशाली स्टेज बन गई ना। फिर उस शक्तिशाली स्टेज से फिर जैसे बीज रचता है, तो रचता स्वरूप बन जाते, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने वाले बन जाते। फिर जो भी एक्सप्रेस होगा ना, वो कर्म संपूर्ण और श्रेष्ठ होगा ना। तो इसलिए जब वो अपनी पावरफुल स्टेज होगी तो किसी चीज का असर नहीं पड़ेगा ना हमको। ये जो दूसरा है ना भाई, दूसरों के प्रभाव का खत्म, असर कैसे खत्म करें? कोई जादू करता है, कोई टोना करता है, कोई मंत्र पढ़ता है, पर वो असर होएगा नहीं ना। शक्तिशाली, इतनी वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हो गए, सर्वशक्तिमान के साथ मेरा संबंध है, स्थिति निर्विकल्प निर्संकल्प है, ईश्वरीय नशा और निश्चय है, तो कनेक्शन है ही नहीं ना दूसरे के साथ। हमारे पर असर हो ही नहीं रहा ना, जैसे फायर प्रूफ बन गए ना। फायर है पर फायर प्रूफ बन गए, वाटर है पर वाटर प्रूफ बन गए। दूसरा कितना भी शक्तिशाली होवे, हमारी अवस्था जो है वो एकदम पावरफुल रहेगी। पर हम सोच करके कनेक्शन जोड़ रहे हैं ना, बीज को धरती में डाल दिया, पानी मिला तो स्प्राउट बने, उसमें उगेगा जरूर। वो बार बार सोच कर रहे हैं ना, उसका असर होता है। फिर कहते हैं हाँ बड़ा बड़ा असर था, जादू मंत्र का बड़ा असर था। वो प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि हमने देह के भान में आ गए ना। तो एक 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 का दूसरी चीज के साथ कनेक्शन है आत्मिक, इसीलिए आत्मिक बल भी चाहिए, ईश्वरीय बल चाहिए ना। अभी समय के हिसाब से तो मुझे पूरा करना होगा, क्योंकि 6:30 बजे है, तो योग का बल चाहिए। तो इसलिए हम ही बाबा के निमित्त बच्चे निर्माण बन करके विश्व नव निर्माण का कार्य करें, तो सफलता मिले, तो बाबा से इनाम मिले ना। ओके, ओम शांति, ओम शांति।